मेजर सुमन, सबसे पहले तो आपको इतना बड़ा सम्मान मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको 2019 का यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने की जानकारी कब मिली और इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही?
मुझे इसकी जानकारी रविवार को मिल गई थी। मुझे ईमेल आया था उनमें से। मेरी पहली प्रतिक्रिया मैं बताऊं, मतलब मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ जब मुझे ये जानकारी मिली, क्योंकि मैं मिशन से दिसंबर में वापस आ चुकी थी एंड ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। तो मेरे वापस आने के बाद ये सब कुछ हुआ। सबसे पहला मेरा रिएक्शन जो था, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी अच्छी खबर है तो उनसे बेहतर कौन होगा इसको शेयर करने के लिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उन्हें फोन किया, सभी बहुत खुश थे।
इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल कब आया आपको और फिर वहां से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल होने तक का सफर कैसे तय किया?
मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर आपको पता हो तो उत्तराखंड में लगभग हर परिवार में एक फौजी है, तो हम उन्हीं फौजियों की कहानी सुनते सुनते बड़े हुए। जब वो छुट्टी पे आते थे तो हम अपनी कहानियां सुनाते थे, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी फौज में जाना है। पर तब छोटे बच्चे थे और काफी लोगों में होता था कि अच्छा ये लड़का है ये लड़की है, तो मुझे लगता था कि क्या लड़कियां भी फौज में जा सकती हैं, ये सवाल था मन में। मैंने अपने पिताजी के साथ इस सवाल को शेयर किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, कोशिश करो। तो तब से एक मन में आया कि ठीक है, मैं अभी कर सकती हूँ, मैं अभी जाऊंगी। ऑल्सो मेरे फादर फायर ब्रिगेड में सर्विस करते थे, तो उनका भी एक यूनिफॉर्म होता है, वो भी जब उसको पहनते थे तो मुझे लगता था कि हाँ, यूनिफॉर्म में प्राइड है, यूनिफॉर्म में गर्व है, मुझे भी पहननी है ये एक दिन। तो मैंने कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे पता नहीं था कि एनडीए में लड़कियां नहीं जा सकती हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी में। तो जब मैंने 12th किया तो मुझमें इतना जोश था कि मैंने 12th के बाद एनडीए का फॉर्म लेके आ गई। बाद में पता चला कि नहीं, एनडीए का फॉर्म तो लड़कियां नहीं भर सकती हैं। तो ठीक है, फिर हमने ग्रेजुएशन किया एंड ग्रेजुएशन के बाद मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दिया, पर सफलता इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए। मुझे चौथे प्रयास में सफलता मिली। उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की। 2011 में मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट हुई हूँ। पास आउट होने के बाद मुझे इंडियन आर्मी की कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन होने का मौका मिला। उससे आगे का सफर मैं कहूंगी बहुत ही रोमांचक रहा है मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी जगहें देखी मैंने इंडियन आर्मी में रहते हुए। अगर मैं कहूँ कि मैंने उसके आगे संयुक्त राष्ट्र में जाने का सफर कैसे पूरा किया, तो जब मैं आर्मी ज्वाइन किया था तो कभी सोचा नहीं था कि वहां जाऊंगी, क्योंकि पहली चीज जो चुनाव होता है संयुक्त राष्ट्र में जाने के लिए वो बहुत कठिन है। काफी दौरों से गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, बहुत कठिन चुनाव होता है। तो हम अपना काम मेहनत से करते रहे और मैं नॉर्थ ईस्ट में थी, नॉर्थ में थी, वहां पर जहाँ जो भी काम था वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहे। 2018 में मुझे अचानक पता चला कि मेरे को चुना गया है एंटेबे में, संयुक्त राष्ट्र सिग्नल एकेडमी है, यूनाइटेड नेशन सिग्नल एकेडमी। तो वहां पर सिग्नल्स का कोई स्पेसिफिक, यूनाइटेड नेशन सिग्नल्स का कोई कोर्स था, मुझे उसके लिए चुना गया था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि मुझे चुना गया है इसके लिए। तो मैं युगांडा गई यूनाइटेड नेशन सिग्नल एकेडमी में, एंटेबे में। वहां पर मैंने वो कोर्स करके वापस आई। वो कोर्स करने के, वापस आने के एक महीने के अंदर अंदर मेरा चुनाव साउथ सुडान जाने के लिए हो गया था। बस फिर वहां से सफर शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र का।
जब दक्षिणी सुडान में आपकी तैनाती की गई तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आपके मन में कभी कोई ऐसा विचार आया, कोई संशय आया कि इतनी दूर कैसे रहूंगी?
मेरे परिवार को असल में, क्योंकि कोई भी फौजी नहीं है तो उनको नहीं पता कि संयुक्त राष्ट्र में जाना क्या होता है, कैसे जाते हैं। पर हाँ, इतना तो समझ आया था कि विदेश जाएगी, वहां पे रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है तो कुछ परेशानी हो सकती है। तो ऑफकोर्स माता पिता को चिंता तो थी, लेकिन क्योंकि मैं उससे पहले भी फील्ड एरिया में रह चुकी थी तो उनको पूरा भरोसा था कि मैं ये भी कर लूंगी। तो इतना उन्होंने बस एक बार चिंता जताई कि इतनी दूर कैसे जाओगी, क्या है वहाँ पे, और भारतीय हैं या नहीं है, क्योंकि नॉन फौजी बैकग्राउंड से तो इतना पता नहीं है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ, वहाँ पे बहुत सारे भारतीय होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कोर्समेट्स भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो फिर उनकी चिंता बिल्कुल दूर हो गई। अच्छा, मेरे मन में तो बिल्कुल भी संशय नहीं आया, बल्कि मैं कहूँ कि जब मुझे पता चला कि मुझे साउथ सुडान जाना है तो मैं बहुत रोमांचित थी, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ मेरी जिंदगी में आया। बहुत रोमांच था, ठीक है किसी नई जगह जाएंगे वहां पर कुछ नया सीखेंगे और संयुक्त राष्ट्र में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के का फ्लैग लगा के संयुक्त राष्ट्र के अंदर सर्विस देना अपनी, ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि इसके लिए मेरा चुनाव हुआ है। तो संशय तो कभी कोई मन में नहीं आया, रोमांच बहुत।
तो दक्षिणी सुडान में काम करना आपके लिए किस तरह से अलग रहा? एक अलग संस्कृति थी, अलग भाषा, संघर्षरत इलाका, किस तरह से काम को अंजाम दिया वहाँ, क्या बड़ी चुनौतियां थी जो सामने आई?
बहुत अलग एक्सपीरियंस था दक्षिणी सुडान में मेरा, बहुत ही अलग संस्कृति है अगर हम अपने देश से उसको कंपेयर करें तो, बहुत ज्यादा अलग संस्कृति है, बहुत अलग भाषा है, बहुत अलग लोग हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं हमारा। और अगर मैं कहूँ कि भारतीयों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव है तो ये गलत नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा जब भी हम किसी फील्ड में जाते थे, किसी गाँव में जाते थे, पेट्रोलिंग पे जाते थे। पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग वहाँ पे इंग्लिश बोल पाते हैं जबकि उनकी भाषा अरेबिक है, काफी लोग इंग्लिश बोल पाते हैं वहाँ पे। पर जब हम किसी रिमोट एरिया में जाते थे वहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये फर्स्ट बैरियर होता है, मतलब किसी से पहली बार बात करना उसको कैसे तोड़ा जाए। तो मैंने सोचा और फिर मैंने बेसिक अरेबिक ऑनलाइन थोड़ा बहुत सीखा एंड उसने मेरी बहुत मदद की। मतलब जब मैं लोगों से पहली बार मिलती हूँ और मैं उन्हें अरेबिक में हेलो बोलती थी तो आधा हम लोगों के बीच का बैरियर वैसे ही खत्म हो जाता था। अगर चुनौती आप कहेंगे तो चुनौती, पहली चुनौती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि बहुत सारे चेक पोस्ट आते थे, हमें हर जगह पूछा जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। फिर हम एक जगह समझाने के बाद दूसरी जगह जब जाते तो दूसरे चेक पोस्ट पर भी हमें वही समझाना पड़ता था क्योंकि कोई भी फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट के बीच में। तो ये मैं कहूंगी सबसे बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती तो मुझे लगता है वो शायद हर जगह ही होती होगी कि बाहरी व्यक्ति पे हर कोई बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता है। वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमें समझाना पड़ता था कई बार कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे दोस्ती करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप लोगों का भला चाहते हैं। तीसरी दिक्कत थी, सड़कें बहुत कम हैं तो इधर उधर मूवमेंट में काफी तकलीफ होती थी।
आपने कहा कि बाहरी लोगों पर विश्वास करना अक्सर मुश्किल होता है, क्या आपको लगता है कि महिला होने से स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना ज्यादा सरल हो जाता है?
बिल्कुल, मुझे लगता है महिला होने से स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना बहुत आसान हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा महिला होना भी एक प्लस पॉइंट था कि मैं ज्यादा लोगों से बात कर पाई, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाई। और क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर एक प्राकृतिक मातृत्व वाली भावना होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो जब वो किसी से पहली बार मिलती हैं तो वो मातृत्व वाली भावना या सॉफ्टनेस वाली भावना से हर कोई उनसे बात करने में झिझकता नहीं है, मतलब परेशानी नहीं होती है, तो शायद ये बहुत आसान होता है। दूसरा मैं कहूँगी कि किसी भी संस्कृति में, किसी भी इतिहास में महिलाओं की छवि जो है वो बहुत ही क्रूर नहीं रही है। मुझे नहीं लगता किसी भी संस्कृति में महिलाओं को क्रूरता से जोड़ा जाता हो। सो वो भी एक मान्यता है लोगों में कि ठीक है महिलाएं हैं तो सॉफ्ट होंगी, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ होता है, बहुत आसान होता है अगर आप एक महिला हैं तो विश्वास जीतना बहुत सरल होता है। मैं कहूंगी कि जब हम चेक पोस्ट पे जाते थे, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी जो चुनौती थी वो थी एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जनरली मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जब साथ में होते थे, अगर मेरे साथ कोई पुरुष मिलिट्री ऑब्जर्वर है वो चेक पोस्ट पे गया है तो उससे बहुत तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि और कौन है तुम्हारे साथ, क्यों जा रहे हो, हमें कागज दिखाओ कि परमिशन है जाने की या नहीं है। पर अगर मैं जाती थी उनसे नेगोशिएट करने के लिए तो बहुत आसानी से मुझसे वो लोग बात कर लेते थे, मुझे इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता देते थे कि ठीक है अगले चेक पोस्ट पर ये आपको मिलेगा तो आप वहां से आसानी से निकल सकते हैं, या आप इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते में ज्यादा चेक पोस्ट पड़ेंगे, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। तो मुझे लगता है कि मुझे काफी काफी इसका फायदा हुआ एक महिला शांति दूत होने का वहां पे, क्योंकि लोग बहुत आसानी से बातचीत कर लेते हैं।
तो ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, इसके क्या मायने हैं, अगर आप हमारे ऑडियंस को समझा सके, हमारे श्रोताओं को बता सके कि ये अवार्ड आपको क्यों मिल रहा है, और विशेषकर अपने रोजाना की पीस कीपिंग कार्य में जेंडर पर्सपेक्टिव और संवेदनशीलता को आप कैसे शामिल करती हैं?
जेंडर एडवोकेट अवार्ड उस शांति दूत को दिया जाता है, जरूरी नहीं है किसी महिला को ही दिया जाए ये अवार्ड। किसी पुरुष शांति दूत को भी मिल सकता है, किसी महिला शांति दूत को भी मिल सकता है। ये अवार्ड मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 को अपने दिनचर्या के कामों में शामिल करने के लिए, अपने डेली की पीस कीपिंग लाइफ में शामिल करने के लिए। अब अगर मैं कहूँ कि 1325 क्या है, तो ये कहता है कि वुमेन पीस और सिक्योरिटी, इसको कैसे आज के जो कंफ्लिक्ट एरियाज हैं वहाँ पर उसको हम कैसे पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं। तो कोई भी शांति दूत अगर इन एरियाज में काम करता है या अपने डे टू डे ड्यूटीज को में जेंडर को इंटीग्रेट करता है, तो उस शांति दूत को ये अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ। मैंने अपने दिनचर्या में ये कैसे किया, पहले जब मैं टीम साइट में थी एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर, तो हम जॉइंट पेट्रोल्स पे जाते थे, गाँव में जाते थे, महिलाओं से मिलते थे या पुरुषों से मिलते थे या उस गांव के लीडर्स से मिलते थे, तो हम उन्हें समझाते थे कि लड़कियों का भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है या महिलाओं की के अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि कोई फॉर्मल स्कूलिंग अगर उन्होंने नहीं किए तो उन्हें नहीं पता। तो हम उन्हें बताते थे कि कैसे विश्व भर में महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ रही, विश्व भर में महिलाओं के अधिकार क्या है, उन्हें क्या मिलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम उन्हें डेली की बातचीत में हम पेट्रोलिंग के दौरान हम बताया करते थे। दूसरा मैं फिर कुछ समय बाद फोर्स हेडक्वार्टर में चली गई थी ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे। तो जब मैं ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे गई, तो जो नए मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मिशन में आते हैं उनका ट्रेनिंग का जिम्मा मेरे ऊपर था, तो उनके ट्रेनिंग के शेड्यूल में हमने फिर एक नया जेंडर वाला, ताकि वो सब जब फील्ड में जाए तो उन्हें पता रहे कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है, तो वो हमने उनके ट्रेनिंग के करिकुलम में ऐड किया, उनको भी हम उसमें ऐड करते थे, ताकि जो नए लोग मिशन में आए वो भी जेंडर सेंसिटिव हो सके। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, उनको हमने ट्रेन किया, उनके लिए हम सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्लासेस ऑर्गेनाइज करते थे कि कैसे वो लोग अपनी फोर्स में भी जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी को ला सकते हैं, कैसे वो लोग कर्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस को, इस सब के ऊपर हम उनके उनके लिए सेमिनार्स अटेंड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। फिर मुझे सिलेक्ट किया गया था केन्या जाने के लिए, जहाँ पे मुझे पीस सपोर्ट स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस का एक कोर्स किया। तो उसकी वजह से, उस कोर्स करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, मैं काफी लोगों को ये बता पाती थी कि कैसे हम अपने मिशन में कैसे फोर्स काम कर सकता है इसको रोकने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए।
तो आपके इन प्रयासों से क्या उस इलाके में कोई बड़े बदलाव आए जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे?
हाँ, बदलाव आए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट फोर्स ने ना कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, या अगर हम इसे कहें CRSV एक्शन प्लान लॉन्च किया 2019 में। मतलब वो समझे हैं इसका महत्व कि हाँ जेंडर क्या है, जेंडर पैरिटी क्या है, जेंडर इक्वालिटी क्या है, वुमेन राइट्स क्या है, वो समझे हैं इस बारे में। क्योंकि उन्होंने 2019 में पिछले साल जब हम ये सब कर रहे थे मिशन में, तो उन्होंने अपना एक एक्शन प्लान लॉन्च किया, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है मैं कहूंगी 19 में उन लोगों के लिए जो इससे जुड़े हुए थे, जेंडर अफेयर यूनिट, वुमेन अफेयर्स यूनिट, जेंडर एडवाइजर्स, ये सब एक बहुत बड़ा सफलता कहूंगी मैं उन सब के लिए जो इस मिशन से जुड़े हुए थे कि हाँ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कुछ समझे इस बारे में।
शांति रक्षकों को, खासतौर पर महिला शांति रक्षकों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगी?
हम सबको अपने दिनचर्या के कामों में जेंडर पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करना चाहिए, जहां पर भी हो सके। हम पेट्रोलिंग जा रहे हैं तो हमें जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि काफी बार हमसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन की डिमांड की जाती है जो हमें लोकल एरियाज में जाके लोकल से इंटरेक्ट करके लेकर आनी है, पर हम हर तरीके का सवाल हर किसी से नहीं पूछ सकते। तो हमें उस बारे में जेंडर सेंसिटिव होना है कि हम किससे क्या पूछ सकते हैं और किससे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पर पुरुष शांति दूत। दूसरा, महिला शांति सैनिकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब हम किसी से कम नहीं है, वो तो पहले ही हमने प्रूव कर दिया है। अगर हम शांति मिशन में गए हैं तो हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, तभी हम वहां पर पहुंचे हैं। एंड मैं कहूंगी कि हमें और मजबूती से काम करना चाहिए, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां की महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागृत करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ताकि हमारा वहां पे रहना सफल सफल हो।